हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज की मॉर्निंग भागवत कक्षा में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आविर्भाव दिवस है, तो उनके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। और उससे पहले जो है पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव दिवस है, तो उसके ये गौड़िया वैष्णव चरितामृत में से पढ़ेंगे इसको। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर निरंतर नित्यानंद प्रभु के स्मरण एवं सेवा में निमग्न रहते थे। उनके पुत्र कन्नू ठाकुर इतने उन्नत भक्त थे कि श्री कृष्ण उनके देह में सदैव निवास करते थे। जब कन्नू 5 वर्ष के थे तो माँ जहनवा उन्हें वृंदावन ले गई। उनकी विशुद्ध भक्ति देखते हुए गोस्वामियों ने प्रफुल्ल हृदय से उनका अभिवादन किया। गोलोक वृंदावन में पुरुषोत्तम दास ठाकुर 12 गोपालों में से एक ग्वाल बाल के रूप में बलराम की सेवा करते हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी की। और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिनके बारे में इतने बड़े आचार्य थे कि उनके लिए अगर कोई सीनियर डिवोटी इसकी कथा करते तो उनका ग्लोरिफिकेशन होता, बट मेरे लिए ये शुद्धिकरण है कि मैं उनके बारे में कुछ जो है बोलने का प्रयास करूँगा। तो आप सब कृपा करिए कि मैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर सकूँ। और ख़ास करके यहाँ बैठे हुए इसलिए रुक्मणी कृष्ण प्रभु जी, राम राघव प्रभु जी, मैं सीनियर डिवोटी से प्रार्थना करता हूँ कि कृपा करें कि मैं इसके ऊपर बोल सकूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ज़्यादातर पास्ट टाइम्स कई बार कथाएं होती हैं, तो जो रेगुलर आने वाले डिवोटी हैं उनको सबको पता ही है। तो बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उनके चर्चा करने के विषय में कि किस चीज़ पर चर्चा करें। भक्ति विकास स्वामी ने बहुत बहुत बड़े ग्रंथ लिखे हैं उनके जो है उनकी प्रशंसा में, और बहुत सारे और भी ग्रंथ हैं। तो ये आचार्यों का आविर्भाव और तिरुभाव अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑस्पिशियस दिन माना जाता है, खास करके हम गौड़िया वैष्णव के लिए जो गौड़िया वैष्णव के प्रमुख आचार्य हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो ऐसे समय में इस धरा पर प्रकट हुए जिसमें गौड़िया वैष्णव में बहुत कन्फ्यूजन था, और ये गौड़िया वैष्णव सिद्धांत जो है प्रायः लुप्त प्रायसा हो गया था, या गौड़िया वैष्णव सिद्धांत के नाम पर जो है उल्टी सीधी चीज़ें हो रही थी। और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जो है वो बहुत वो प्रयास कर रहे थे कि वो वैष्णव सिद्धांत को एस्टैब्लिश करने का, परंतु उन्हें लगा था कि वो अकेले इन कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने जो है भगवान से प्रार्थना की कि उनके लिए कोई जो है एक मदद करने के लिए, या कोई शिष्य को भेजें या एक पुत्र को भेजें, अर्थात अपना कोई किरण भेजें। और उनकी प्रार्थना पर जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए थे ऐसे समय में जबकि गौड़िया वैष्णव के चारों तरफ जो है और गौड़िया वैष्णव की निंदा हो रही थी। और जैसा कि पीछे भी हमने सुना है, कई स्पीकर बता रहे थे कि जो गौड़िया वैष्णव को उस समय सेक्स रिलीजन भी समझा जाता था, कि लोग जो है उसके नाम पर कुछ भी करते थे, मांसाहार, यौनाचार और इस तरह से कई सारी चीज़ें, बहुत जो है इसमें आउल बाउल पता नहीं कितने तरह के जो है सहज्यावाद फैला हुआ था। और जो वैष्णव सिद्धांत है वो वैष्णव वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे समय में जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती का प्रकट हुआ। हालांकि आचार्य के प्रकट होने में और भगवान के प्रकट होने में, जो भगवान के खास करके जो नित्य सिद्ध आचार्य हैं उनके प्रकट होने में और भगवान के प्रकट होने में ज़्यादा अंतर नहीं है। जैसे उनके जन्म और कर्म दिव्य होते हैं भगवान के, ऐसे ही आचार्यों के जन्म और कर्म भी दिव्य होते हैं, क्योंकि वो जो है नित्य सिद्ध आचार्य हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी उन्हीं आचार्यों में से थे। और क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो अपने कार्य में उपस्थित होता है, जैसे भगवान के लिए कहते हैं कि उनके जो कर्म हैं वो बिल्कुल दिव्य हैं, इसी तरह से जो शुद्ध भक्त के कर्म जो हैं वो भी दिव्य होते हैं। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने यहाँ प्रकट होकर जो कुछ भी किया, ऐसे परिस्थितियों में उन्होंने गौड़िया वैष्णव के सिद्धांत को स्थापित किया। और जब वो इस धराधाम से गए, उससे पहले इन्होंने भक्त जो है वो गौड़िया वैष्णव को और जो गौड़िया सिद्धांत की फिलॉसफी है उसको पूरी तरह से एस्टैब्लिश करके चले गए थे। और जो हम जो स्वरूप हम गौड़िया वैष्णव के का अब देखते हैं और जो सिद्धांत और जो चीज़ें जो रूल्स रेगुलेशन जो अभी प्रचलित है ये सब जो है सब लुप्त हो गया था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बाद श्री प्रभुपाद ने इसको जो है और ज़्यादा जो है मजबूत बनाया इसको। तो हम देखते हैं कि जो भक्ति सिद्धांत जो सरस्वती ठाकुर हैं वो एक मिशन को लेकर प्रकट हुए थे। और जैसे भगवान के ज़्यादातर जो अवतार हैं उनका कुछ खास मिशन होता है प्रकट होने का। आप जैसे भी देखेंगे जितने भी अवतार होते हैं भगवान के उनका एक मिशन होता है और मिशन पूरा करने के बाद चले जाते हैं। जैसे खास करके जब हम जो अवतार हैं सतयुग में जो उसमें देखने से कूर्म हैं या बराह हैं ये सब उन्होंने एक चीज़ के लिए आए, एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए आए, उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ को किया और फिर धराधाम से चले गए। उनका आने का एक स्पेसिफिक मकसद था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का भी कुछ इसी तरह का मकसद था। वो एक प्रकट हुए इस धराधाम पर, इतने सारे उसके बीच में वैमनस्यता के बीच में इतने सारे जो है वो विरोधों के बीच में जो है उन्होंने गौड़िया सिद्धांत की फिलॉसफी को स्थापित किया और फिर इस धराधाम से चले गए। तो ऐसे उनके लिए जो है वो कृष्ण भक्ति के लिए जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कुछ भी करने को तैयार थे कृष्ण भक्ति को स्थापित करने के लिए। और उन्होंने अपने जो उनके अनुयायी थे या उनके जो शिष्य थे उनको भी उन्होंने यही शिक्षा दी कि कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए जो है वो सब कुछ सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। और फिर जो एक बात उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि इतना आसान नहीं है भक्ति, कोई जो है इतना ईजी नहीं है कि बेड अप रोज नहीं है कि बड़े आराम से जो है भक्ति हो जाती है। ये भक्ति में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं और सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो है हमारा मन पैदा करता है। और इससे जो है भक्ति जो बहुत और डिफिकल्ट हो जाती है। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने जो है जो जिस किस का प्रचार किया वो खुद करके दिखाया उन चीज़ों को, जिस चीज़ को करने के लिए आए थे। हालांकि उनके जो मिशन था उनका तीन मुख्य उद्देश्य था, एक तो अपना भजन करना, प्रचार करना और सहज्यावाद का खंडन करना। तो कहा जाता है कि जो जब भी किसी कोई आचार्य आता है तो उसके जो है अंदर जो है आने का इनका भी ये मिशन था और यही मिशन था मेन, कि वो इस बात के लेके चिंतित थे कि जो एक आम आदमी है जो एक जनरल मैसेज है उसका वो उसका कैसे उद्धार होगा। क्योंकि जो गौड़िया वैष्णव सिद्धांत जो महाप्रभु ने एक पैकेज दिया था, एक रस्सी लटकाई थी इस बीच में बाहर निकलने के लिए, वो ऑलमोस्ट जो है ख़त्म होता जा रहा था। तो ऐसे समय में उसको स्थापित करना इनका प्रमुख दायित्व था ताकि जो है उसको पकड़ करके या उस पैकेज को लेकर के जो लोग भगवान के धाम आ सकेंगे वापस। फिर इस सॉल्यूशन जो है अब ऐसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो है वो हमने प्रॉब्लम को पहचान भी लिया तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे निकालेंगे। तो उन्होंने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया कि कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए कृष्ण को, पूर्ण शरणागत अगर हम कृष्ण को होते हैं तो निश्चित रूप से इस जो है इस भवसागर से हम बाहर निकल जाएंगे। तो उनके पास सल्यूशन भी है, कई सारे आचार्यों के पास जो है अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे लोगों के पास इस पास सल्यूशन भी होता है बट लोग करते नहीं हैं उसको। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में करुणा नहीं होती। आपके पास जो है समस्या का समाधान भी है पर आप करते क्यों नहीं, क्योंकि आपके हृदय में इतनी करुणा नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के हृदय में करुणा भी बहुत थी, इसीलिए उन्होंने जो है एक ऐसा पैकेज दिया, एक ऐसे इस तरह से स्थापित किया इन चीज़ों को, गौड़िया वैष्णव की फिलॉसफी को, ताकि जो है जो इसकी शरण लेगा वो आसानी से इस भवबंधन को काट पाएगा और ये बाहर निकल पाएगा इससे। इसलिए जो उनमें था कि एक तो चिंतित थे कि कैसे ये लोग बाहर निकलें, दूसरा उन्होंने एक सोल्यूशन दिया, सोल्यूशन के लिए उन्होंने करुणा भी करी और करुणा करके जो है फिर उन्होंने इस चीज़ को स्थापित किया। तो वो बताते हैं कि जो जब हम किसी पर करुणा करते हैं या जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करेंगे तो निश्चित रूप से आपको तकलीफ होगी, दूसरे का उपकार बिना तकलीफ खुद को तकलीफ में डाले नहीं हो सकता। आप किसी न किसी रूप में अपने आप को तकलीफ में डालेंगे, तभी दूसरे का उपकार कर पाएंगे। तो जनरली जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहा करते थे कि अगर कांटा निकालना है तो हो सकता है वो कांटे निकालते आपके हाथ में भी चुभ जाए, क्योंकि कांटे हैं और कांटे निकालेंगे तो आपके हाथ में भी चुभ जाएगा और वहां से खून निकलेगा। तो इसी तरह से जब हम इस गंदगी की सफाई करेंगे, जब हम लोगों को यहाँ से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे, तो वो जो है वो जो समस्याएं हैं और वो जो चीज़ें हैं वो हमें भी प्रभावित करने का प्रयास कर सकती हैं। बट क्या है कि आप जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर थे उनकी हाइट इतनी थी, अर्थात वो इतने ज़्यादा उनकी भक्ति में ऊंची थी या वो नित्य सिद्ध थे कि कोई भी समस्याएं या कोई भी जो चीज़ें हैं उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती थी। और इसकी उसका वजह भी था कि एक बार जब वो वृंदावन में मंदिर के दर्शन करने आए थे तो वृंदावन के सारे मंदिरों ने जो है दरवाजा बंद कर दिया। तो उन्होंने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ये लोग मेरे अनुयायी मुझे शिष्य मुझे छोड़कर क्यों ना चले जाएं, ये मंदिर बंद कुछ भी, मैंने उन्होंने कहा कि कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं इस कृष्ण भक्ति को और इस गौड़िया सिद्धांत को स्थापित करके रहूंगा, मैं इस जगत में चाहे अकेले खड़ा रहूंगा पूरी दुनिया मेरे विरोध में क्यों ना हो जाए। उन्होंने यही स्टैंड किया था कि द होल वर्ल्ड जो है मुझे अपोज क्यों ना करे, मैं तब भी मैं इस कृष्ण भक्ति को स्थापित करके रहूंगा। और ऐसा उन्होंने कर दिखाया जो है, उन्होंने एक नींव डाल दी गौड़िया वैष्णव की और ऐसा मजबूत फाउंडेशन दिया जिसके नींव पर यह अभी इस्कॉन भी खड़ा है, उसी नींव पर इस्कॉन खड़ा है। क्योंकि महाप्रभु तो केवल आप समझ लीजिए एक सिद्धांत दे के चले गए या गोस्वामियों को उन्होंने जो है वृंदावन भेज दिया, परंतु गोस्वामी ने लीलास्थलियों का को प्रकाश में लेके आए, बुक्स लिखे, सिद्धांतों को दिया, पर उनके जाने के बाद जो है वो बिल्कुल खाली हो गया। और एक तरह से समझ लीजिए 200-250 वर्ष तक ये जो गौड़िया वैष्णव फिलोसफी है वो बिल्कुल अजीब सी स्थिति में रही और लोगों ने इसके अलग अलग अपने अपने हिसाब से जो है इसकी व्याख्या करी। उसी समय जो है उन्हें अधर्म बहुत फैल गया था, सहजियावाद था, मायावाद था, और इस सब के बीच में जो है उन्हें इस गौड़िया सिद्धांत को स्थापित करना था, तो बहुत कठिन था, बहुत चैलेंज। और सबसे बड़ी बात थी कि उनको कोई सहयोग करने वाला नहीं था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जो है उनके चले जाने के बाद जो है वो गाइडेंस जो कि भक्ति विनोद ठाकुर से लिया करते थे इन चीजों के लिए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जाने के बाद जो है वो बिल्कुल अकेले पड़ गए और जहां भी जाते थे ज्यादा उनके विरोधी थे, उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत कम थे, विरोधी लोग ज्यादा थे। क्योंकि उस समय में जो प्रचलित था जो समाज में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसी का विरोध करते थे, तो वो लोग जो उनके उस तरफ थे वो कैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती का जो है वो सपोर्ट करते। और इवन उन्होंने बहुत सारे जो है जो कई तरह की जो उसमें संन्यास में या कई तरह की जो भक्ति में बहुत सारे तरह की जो भ्रांतियां थी उसको भी उन्होंने तोड़ा, जैसे सिले हुए कपड़े ना पहनना, कार में ना चढ़ना, समुद्र के पार ना जाना, और इस तरह से बहुत सारे जूते पहनना, कोट पहनना, तो ये सब सन्यासियों का काम नहीं होता। सन्यासी का मतलब या भक्त का मतलब होता था कोई मड़ियल सा दिखने वाला व्यक्ति, फटे चिथड़े कपड़े, बड़ा अजीब सा गाल पिचका हुआ, बड़ा अजीब सा दुबला पतला, वो भक्त होगा। पहले के हमारे मन में भी यही कंसेप्ट होता था कि भक्त का मतलब ऐसा ही होता है। उन्होंने सारी भ्रांतियों को, सारे कंसेप्ट को चेंज किया कि भक्त का मतलब ये नहीं है, उनके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनका जो कुछ भी संसार में है सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सब कुछ जो है वो भगवान की सेवा के लिए प्रयोग करना है, जो कुछ भी संसार में विद्यमान है वो सब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए। और उन्होंने वो सारी चीजों को कृष्ण की सेवा में लगाकर दिखाया, सिर्फ कहा नहीं, उन्होंने जो है इस सारी चीजों को जो है लगाकर दिखाया। तो वो जो है कई उस समय जो स्थिति थी वो बड़ी विचित्र सी थी। और ऐसे समय में श्री श्री राधा राधिका रमण भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो है उन्होंने एक जो चीज बताई थी कि जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम अपने बल्कि जो कर्म फल को भी बदल सकते हैं अगर हम भगवान की भक्ति करके, कि हम किसी का, और इससे भी इम्पोर्टेंट ये है कि हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का गुणगान करके या उनका गुणगान सुन के जो है हमारा भी कर्म फल चेंज हो सकता है। सिर्फ करके नहीं, अगर हम उनके बारे में सुनते भी हैं तो हमारा निश्चित रूप से जो है हम अपने इस कर्म फल को चेंज कर सकते हैं, हमारे अपने कर्म को चेंज कर सकते हैं। इतना पावर है आचार्यों के बारे में सुनने का। तो उन्होंने जो है वो अपने उसके लिए जो है वो मायावाद के खंडन करने के लिए जो है कुछ जो अपने जो डिसाइपल्स थे उसको उन्होंने लगाया कुछ अलग अलग चीज़ों के लिए जो है उन्होंने, हालांकि ये मायावाद का खंडन उनका प्रमुख उद्देश्य नहीं था और ज़्यादा इस पर जो है उन लोग कर भी नहीं पाए कुछ, या उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका मेन फोकस था क्या था कि गौड़िया सिद्धांत को पहले स्थापित करने का, कि एक बार गौड़िया सिद्धांत जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक जो है कोई भी धर्म या कोई भी जो संप्रदाय है वो गौड़िया सिद्धांत की फिलॉसफी को काटता रहेगा। और इस तरह से जो है तो इनका मेन फोकस रहा पूरे लाइफ में जो है कि गौड़िया सिद्धांत को स्थापित करने का, और इस तरह से जो है हम देखते हैं कि उन्होंने गौड़िया सिद्धांत को स्थापित कर दिया। फिर थोड़ा सा उनके लाइफ के बारे में कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे, आप सबको पता होगा कि वो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए थे, और जो उनके बचपन का नाम था वो बिमला प्रसाद दास था, मतलब बिमला प्रसाद था। तो ये दीक्षा का नाम जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती का वर्ष भानवी दयिता दास, उनके दीक्षित नाम जो है उनका जो भक्त गौर किशोरदास बाबा जी से मिला था। सिद्धांत सरस्वती जो है उनको एक टाइटल है, एक उपाधि है जो उन्होंने एस्ट्रोनॉमर्स या एस्ट्रोलॉजी के एक सिद्धांत को स्थापित करने की वजह से दिया गया था, जो कि वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत प्रवीण थे, और इस एस्ट्रोलॉजी के सिद्धांत को सूर्य सिद्धांत, जनरली उसको बताते हैं कि सूर्य सिद्धांत को जब उन्होंने स्थापित किया तो उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि दी गई थी, और इसी सिद्धांत सरस्वती का जो उपाधि है वो कहा जाता है कि वो बहुत बड़े एक विद्वत सभा था जहाँ उनको इस चीज़ के लिए उपाधि दी गई थी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर को और कई सारे लोगों को जो है वो हरा दिया था वहाँ पर, और इस सूर्य सिद्धांत को जो है उन्होंने स्थापित कर दिया था। फिर एक जो प्रमुख बातें थी उन्होंने जो बताई थी कि इस डेड बॉडी का जो उन्होंने कहा था ये मृत शरीर है, ये इस मृत शरीर का उपयोग हम अगर कृष्ण भक्ति के लिए करते हैं तभी ये शरीर को जीवित माना जा सकता है, नहीं तो इस शरीर को जीवित नहीं माना जाएगा अगर हम इसका उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए नहीं करते हैं तो। और जो है वो उनका जो प्रेम भक्ति के प्रचार पर जो उन्होंने ज़्यादा बल दिया था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार, हालांकि एक बड़े विचित्र सी घटना हुई थी, जब वो इस प्रचार का प्रचार कर रहे थे तो ढाका में जो है वो सहजिया लोगों ने, जब वो ढाका में गए उनके शिष्य लोग, तो बहुत सारे सहजिया लोग उन्होंने कहा कि इनके शिष्य को जो है भिक्षा मत दो, और तो उनके जो शिष्य थे उनके पास आए कि लोगों के बीच में जो है इस तरह की बातें फैला दी गई है कि हमारे को वो भिक्षा देने को तैयार नहीं है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा पानी पीकर रहना पड़े तो रहो पर कृष्ण के लिए प्रचार करो। तो जो है उनके अंदर इतना स्पिरिट था प्रचार करने का कि वो चाहते थे कि किसी भी तरह से जो है वो कृष्ण का प्रचार हो, चाहे उसके लिए उन्हें जो भी सहना करना पड़े उन्हें सहना चाहिए। और इसी फिलॉसफी को लेकर के, इसी बात को लेकर के जो है उन्होंने बहुत सारी जो पहले तो मैगजीन सज्जन तोषनी और बहुत सारे ऐसे जो मैगजीन्स से जिसका उन्होंने प्रकाशन करवाया, और कम से कम उन्होंने कलकत्ता में 2 प्रेस, मायापुर में 1 प्रेस, और नदिया में 1 प्रेस, और फिर परमार्थी प्रिंटिंग वर्क्स उड़ीसा में, कटक में, मतलब कई जगह उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करवाए कि कृष्ण से भक्ति से रिलेटेड जो चीज़ें हैं अर्थात कृष्ण भक्ति से रिलेटेड जो साहित्य है उसका अधिक से अधिक प्रकाशन किया जाए, और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो प्रयास किया। और इसमें जो है एक तो इसी के लिए वो कहा करते थे युक्त वैराग्य का उन्होंने जो है कंसेप्ट दिया, जो कि युक्त वैराग्य का कंसेप्ट जो भगवद गीता में है उस कंसेप्ट को उन्होंने सही तरह से प्रयोग करना सिखाया कि युक्त वैराग्य का जो है कैसे प्रयोग किया जाता है। कुछ भी था तो उन्होंने उसको भगवान की सेवा में लगाने के लिए खुद भी किया और अपने डिसाइपल्स को भी समझाया कि जो भी इस संसार में अवेलेबल है या जो भी उपस्थित है आप उसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। और उन्होंने एक नए कंसेप्ट दिए और एक नई चीज दी जो है युक्त वैराग्य के लिए। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कार जो है उन्होंने कार पर चढ़ना शुरू किया, जो कि लोग पहले कार पर सन्यासियों के लिए कार पर चढ़ना मना होता था। जूते पहनने शुरू किए, जो सन्यासी लोग जूते नहीं पहनते थे। कोट पहनना शुरू किया, सन्यासी लोग कभी कोट नहीं पहनते थे। फिर बाहर विदेशों में अपने शिष्य को भेजा, जो कि कभी माना जाता था कि जो है अगर कोई समुद्र के पार जाएगा तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने जो है समुद्र के पार आने तक लंदन में अपने डिवोटीज को भेजा और इस तरह से जो है उन्होंने इस युक्त वैराग्य को कैसे स्थापित करना है इसको सिखाया। फिर हालांकि उनका जो मेन उद्देश्य था वो कई बार जो है एक बार उनके एक डिसाइबल थे, बहुत सारी भिक्षा लेके आ गए और बहुत सारे चीज लेके आ गए थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पूछा कि कैसे भिक्षा कैसे इकट्ठा किया, उनको कुछ कथा करी कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि जो डिसाइबल थे उन्होंने कहा नहीं, तो कहा बिना कथा किए हुए तुमने इतनी सारी चीजें इकट्ठी कर ली तो इससे तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होगा और ना कृष्ण प्रसन्न होंगे इससे। इसलिए बिना कथा के जो है वो भिक्षा लेना भी वो जो है मना करते थे कि जब तक कथा ना करके आओ तब तक तुम्हें भिक्षा लेने का अधिकार नहीं है। हम जिसके यहाँ भिक्षा लेने जाते हैं और वो कहते थे कि हमारा उद्देश्य फंड कलेक्शन करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सोल कलेक्शन करना है, आत्माओं को इकट्ठा करना है हमारा उद्देश्य, हमारा उद्देश्य फंड इकट्ठा करना नहीं है। इस तरीके से जो है हम लोगों से संबंध बनाते हैं, क्योंकि बिना संबंध बनाए जो है आप लोगों को प्रीच नहीं कर सकते। तो संबंध बनाने के लिए जरूरी है कि साधु कहीं जाएगा और भिक्षा की याचना करेगा तो जैसे अगर उसको ये मौका मिलता है उसको प्रीचिंग करना चाहिए या उसको प्रीच करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रीच किए हुए अगर हम कुछ चीजें एक्सेप्ट करते हैं किसी भी चीज किसी से भी तो कृष्ण उसको लेकर कृष्ण नहीं प्रसन्न होते और हमारा शुद्धिकरण भी नहीं होता। तो ये एक जो है वो एक्सक्लूसिवली उन्होंने इस चीज को सिखाया था कि और तभी वो कहते थे। और आप इससे भी बड़ी बात क्या थी युक्त वैराग के लिए, उन्हें पहली बार जो है उनके जो मठ के डिसाइपल थे वो विजिटिंग कार्ड का प्रयोग करते थे। आज से 100 वर्ष पहले सोच लीजिए, विजिटिंग कार्ड जो है ऑफिसों में भी नहीं होता होगा, अंग्रेजों के का छोड़ दीजिए हिंदुस्तान के ऑफिसों में भी नहीं होता होगा। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो डिसाइपल थे वो विजिटिंग कार्ड का प्रयोग करते थे कि क्यों कहीं भी जाते थे तो वो अब सबसे बड़े बोलते थे कि आप बहुत अच्छे जो है वो ड्रेस करके जाओ, मतलब अच्छे कपड़े पहन के जाओ। जैसे प्रभुपाद भी कहते थे जो फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस, या बहुत पहले ठीक से कपड़े पहनो बहुत अच्छी तरह से रहो और उसके बाद जो है एड्रेस करने जाओ। तो उनका ये उद्देश्य नहीं था कि डिवोटी देखने में बहुत अच्छे लगे, उनका उद्देश्य था इस तरह से लोग कृष्ण के प्रति आकृष्ट होंगे, लोग पूछेंगे कि ये व्यक्ति कौन है कहाँ से आया है, और वो जब देखेंगे कि मेरे से अच्छे कपड़े पहन के आया है, मेरे से अच्छा सिविलाइज्ड व्यक्ति है, मेरे से अच्छे ज्यादा अंग्रेजी जानता है, मेरे से अच्छा ज्यादा बातें ठीक कर सकता है, तो व्यक्ति कृष्ण के प्रति आकृष्ट होगा। फिर करा एक दुबले पतले मड़ियल व्यक्ति को देखकर जो है वो व्यक्ति लोग प्रसन्न नहीं होंगे। फिर उनके जो है वो मस्तिष्क में वो एक कंसेप्ट जाएगा कि भक्त ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने इस धारणा को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो मैं उनका प्रीचिंग एस्पेक्ट बता रहा हूं कि किस तरह से जो है उन्होंने प्रीचिंग के लिए युक्त वैराग्य का सहारा लेकर के जो है वो प्रीचिंग को बहुत हाइट तक लेके गए। जबकि उनके गुरु ने उनको 3 आदेश दिए थे, जब भक्ति सॉरी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से जब वो दीक्षा लेने के लिए उन्होंने अप्रोच किया तो आपको पता है कि उस समय के भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते थे, चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था उनको। और ऐसे व्यक्ति जब उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी के पास दीक्षा लेने के लिए अप्रोच किया और गौर किशोरदास बाबा जी अंगूठा छाप थे, पढ़े लिखे नहीं थे बिल्कुल भी, और जब उनको अप्रोच किया दीक्षा लेने के लिए तो जो गौर किशोरदास बाबा थे उन्होंने मना कर दिया, नहीं देना दीक्षा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज को बड़ा झटका लगा क्योंकि वो उस समय के माने जाने विद्वान थे और हर व्यक्ति जानता था इसकी, बल्कि कई ब्राह्मण और कई जो जात के गोस्वामी होते थे वो रास्ता काट के निकल जाते थे, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती यहां से आ रहे तो रास्ता बदल लेते थे, इतना डरते थे, इनका खौफ था उनका। हालांकि अंदर से बहुत करुणाशील थे पर बहुत खौफ था उनका ऐसे लोगों के बीच में, तो उन्होंने लगा पता नहीं ये क्यों नहीं मुझे दीक्षा देना चाहते, या तो उनके लगा ये व्यक्ति बहुत जो है क्या बोलते हैं बहुत या मतलब घमंड है इनके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा प्राउड ही है, या फिर ये व्यक्ति जो है बहुत करुणाशील है, दोनों दोनों तरह से। फिर उन्होंने लगा कि फिर उन्होंने लगा ठीक है मैं इतने बड़े व्यक्ति मेरे इतने अंदर मेरे अंदर इतना गुण है और काफी लोग सब लोग जानते हैं इसको नवद्वीप में या बाकी जगह भी इसका प्रचार है बहुत ज्यादा, तो ये व्यक्ति इतने बड़े गुण को ऐसे मुझे देखकर भी अगर ये दीक्षा के लिए मना कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इस व्यक्ति के पास इससे भी बड़ा कोई गुण होगा। अब सोचने का तरीका देखिए, इस व्यक्ति के पास इससे भी कुछ ऊंची चीज होगी। तो फिर आप सब जानते हैं कथा, तो उन्होंने फिर जो है वो जब दीक्षा ले ली तो उन्होंने भक्ति जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज थे उन्होंने तीन आदेश दिए थे उनको कि कभी कलकत्ता मत जाना, कभी शिष्य मत बनाना और कभी किसी से कुछ लेना मत। उन्होंने तीनों चीजों का आप हमें देखने में लगता है कि तीनों चीजों का विरोध कर दिया उन्होंने। कलकत्ता गए और सबसे पहला गौड़िया मठ स्थान स्थापित किया। बताते हैं कि जो मेन प्रमुख रूप से गौड़िया मठ सबसे पहले एस्टैब्लिश किया उन्होंने, वैसे तो नवद्वीप में उन्होंने 14 गौड़िया मठ स्थापित किए थे 17, बट जो है मेन गौड़िया मठ जिसको उन्होंने फॉर्मली बिल्डिंग और इस तरह से रूप दिया वो कलकत्ता में ही था, वो कहीं और था, बाद में उसको बाग बाजार में शिफ्ट किया गया जिसकी कहानी आप सब सुनते ही हो कि बाग बाजार की कहानी। तो परंतु वो क्या भक्ति सिद्धांत कहा करते थे कि मैं कलकत्ता कभी नहीं गया, मैं तो गौड़िया मठ में जाता हूं और गौड़िया मठ जो है वो बैकुंठ है। आप समझ रहे, कहते हैं मैं अपने मठ में जाता हूं और भगवान का मंदिर है तो वो बैकुंठ धाम है, इसीलिए मैं कलकत्ता तो कभी गया ही नहीं। और फिर कहता कभी शिष्य मत बनाना, उनके कितने शिष्य थे अप्रोक्सीमेटली 7000, आप खुद सोच लीजिए कितने शिष्य थे 60,000। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके लिए एक्सप्लेनेशन देते थे ये मेरे शिष्य नहीं है, ये सब इसको कृष्ण के लिए कार्य करना था और ये जो है गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के जो है आदेश पर कि मैं कृष्ण का भक्ति का प्रचार करने के लिए मैं इनको ये मेरे पास आए और मेरे को गुरु मानने लगे। तो इस तरह से जो है हम एक्सप्लेनेशन देते थे कि ये सब मेरे शिष्य नहीं है, जैसे प्रभुपाद जो है अपने शिष्यों को लेकर बोलते थे कि आपको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है मेरी सहायता करने के लिए। और इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो उनको अगर कोई छोटा बच्चा भी प्रणाम करता था तो बोलते थे दासोस्मि, मतलब उसको बोलते थे कि मैं तुम्हारा दास हूं, कोई भी प्रणाम करे कि अपने आप को सबका दास समझते थे। वो कहते थे कि ये जो सारे शिष्य हैं जो सो कॉल जिनको बगाता मेरे शिष्य हैं वो उनका मैं शिष्य हूं, उनका मैं इन सबका दास हूं। वो इस तरह से जो है उन्होंने इसको एक्सप्लेनेशन दिया। और जो कभी किसी से एक पैसा मत लेना या किसी से कैसे कभी किसी से कुछ ग्रहण मत करना, तो उन्होंने क्या अपने लिए तो मैंने कभी कुछ लिया ही नहीं, मैंने जो कुछ भी लिया है किसी से वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लिया है और कृष्ण की सेवा के लिए राधा रानी की सेवा के लिए लिया है। तो उन्होंने इतने हाइट पर जो है प्रचार करने के लिए देखिए किस किस तरह से जो है उन्होंने इसका वो किया कि वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो प्रचार करने के लिए किस हद तक गए कि उन्होंने हर चीज का जो है एक जो मिसकंसेप्शन चल रहा था वैष्णवों में भी और भक्तों में भी और दूसरे आम लोगों में भी, उस सारे कंसेप्शन को उन्होंने चेंज कर दिया। और इवन वो उस समय के समय में भी वो बाहर के लोगों को भी मठ में बुलाते थे, जैसे बड़े बड़े आप पॉलिटिकल लीडर्स या जैसे आजकल होता है कि हम किसी को बुला लें किसी पॉलिटिकल लीडर्स को, तो कई बार लोग बोलते हैं अब प्रभु जी लोग भी या बड़े बड़े वो भी, जैसे हमारे अभी पुणे मंदिर का उद्घाटन किया हुआ था तो जो है राष्ट्रपति गए थे वहां पर, तो वो इसलिए नहीं बुलाते थे और उद्देश्य भी यही था कि जो है वो कोई व्यक्ति मैं उसको बहुत बड़ा व्यक्ति मानता हूं इस तरह का व्यक्ति है इसलिए मान उसके, बल्कि वो इसलिए बुलाते थे कि इससे जो है वो गौड़िया मठ का बहुत प्रचार होगा कि जहां कहीं भी गवर्नर जमाने राष्ट्रपति गया तो न्यूज़पेपर ने टेलीविजन ने सब ने कवर किया कि इस राष्ट्रपति कहां गए इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन करने, वैसे इस्कॉन टेम्पल का उद्घाटन हो जाता तो किसको पता लगता, हो किसी को भी नहीं पता लगता, कि इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हो गया पुणे में, बहुत बड़ा मंदिर बना है। मतलब राष्ट्रपति के जाने से क्या हुआ कि सबको पता लग गया कि इस्कॉन ऐसे ऐसे पुणे में बहुत बड़ा इस्कॉन मंदिर बना है और उसका उद्घाटन करने के लिए प्रेसिडेंट गया है। तो उद्देश्य यही होता था। तो उन्होंने भी एक बार जो है वो गवर्नर को बुलाया था, और ऐसे भी बताते हैं कि उन्होंने उनको वो सब चीजें भी सर्व करी जो वैष्णव सिद्धांत के खिलाफ थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो चाहते थे कि इसकी वजह से जो है, और हुआ भी ऐसा कि गवर्नर उस समय वो अंग्रेजों का गवर्नर था, तो जैसे ही आया उसकी वजह से पूरे जो उनके जो मीडिया था और जो लोग थे उनका खूब प्रचार हुआ इसका, कि एक ऐसा मठ है जहां पर गवर्नर विजिट करने गए हैं इस तरह से। तो केवल एकमात्र उद्देश्य क्या था, कृष्ण का प्रचार करना, कृष्ण की भक्ति को स्थापित करना, भक्ति जो गौड़िया वैष्णव के जो सिद्धांत हैं उनको, उनसे लोगों को परिचय कराना, एकमात्र इनका यही उद्देश्य था और सारा जीवन वो यही करते रहे। फिर हम देखते हैं कि जो जो उन्होंने जो है एक बार वे जो है वो एक बैराग्य के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा लेक्चर दिया, बहुत बड़ा लेक्चर दिया, और बैठ के जो है फिर उसके बाद वो लेक्चर देने के बाद कहीं आराम से बैठ के मठ में जो है जप कर रहे थे, तो उनके सामने जो है वो भगवान के लिए कुछ केले और कुछ चीजें पड़ी थी, तो एक बंदर आया और दो केले निकाल के चला गया, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उसके पीछे भागे और डंडे लेके, उनके पास बेत होता था हमेशा, बेत लेके भागे और उसको जो है वो बंदर से दो केले वापस ले आए। तो उनके शिष्यों ने कहा कि ये अभी तो आपने आज सुबह इतना बड़ा लेक्चर दिया बैरागी के ऊपर और आप दो केले के लिए जो है पीछे भागे। तो उन्होंने कहा ये मेरे लिए नहीं था, ये केला जो है वो कृष्ण के लिए है, तो मैं कृष्ण की संपत्ति पर मुझे जो है वो रक्षा करना मेरा दायित्व है, मैं किसी और कैसे लेने दे सकता हूं। दुखम न्यासस्य रक्षणम्, दूसरे का जो चीजें हैं उसकी रक्षा करना जो है दुख देता है, मतलब उसको उसके लिए कष्ट होता है। तो उन्होंने कहा कि कृष्ण की सेवा के लिए अगर कष्ट होता है वो कृष्ण के लिए चीजें थी, राधा रानी की प्रसन्नता के लिए था, मैं बंदर को कैसे लेने देता, वो मेरे लिए होता तो मैं उसको सहजता से लेने देता कि मेरे खाने के लिए था वो, पर तो भगवान के लिए था, भगवान के भोग के लिए आया था वो, तो मैं उसे कैसे लेने देता। आप देखिए किस तरह से जो है उन्होंने इस, मतलब जो एक मिसकंसेप्शन है, हम युक्त मतलब क्या समझते हैं युक्त वैराग्य, क्या उन्होंने क्या क्या समझाया इसको कि हमें किस तरह से भगवान की चीजों को जो है भगवान की सेवा के लिए कैसे रखना है और उसकी कैसी रक्षा करनी है, इस तरह से जो है हम। और फिर हम कई बार देखते हैं कि वो जो है हर उनके साथ जो भी चीजें थी, जैसे कई कुछ लोगों को कभी प्रॉब्लम होती थी तो बोलते थे कि हरि कथा ज्यादा करो, ध्यान पूर्वक जप करो, हरि कथा खूब करो, तो तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार कहा जाता कि उन्होंने अपने एक डिसाइपल को जो कि बुखार से पीड़ित था और एक दूसरे डिसाइपल को लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो उन्होंने रोक लिया, रुको कहां लेके जा रहे हो, तो कहा महाराज ऐसे ऐसे ये, कहा इसको बोलो आराम से वहां सोए सोए चैंटिंग करेगा, क्योंकि हमारे जो दुख का कारण है वो कह रहे हैं मूल रूप से जो हमारे कर्म हैं या हमारे पाप हैं वो हमारे दुख के रूप में जो है कन्वर्ट होकर हमारे सामने आते हैं। तो और ये सच सच है, कई शास्त्रों में जो है इस चीज को लिखा गया है, पद्म पुराण में भी और कई दूसरे जगह पर भी, अगर किसी डिवोटी के साथ अगर उसका दुख कंटिन्यूसली बना रहता है, ठीक है कि आप बीमार हो गए ठीक हो गए ये सब चलता रहता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन की वजह से होता है कि हम डिसऑर्डर में होते हैं, तो आप बीमार हो गए, सिर में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो गया, दैट्स ओके। पर किसी भी एक भक्त का कंसिस्टेंटली अगर वो बीमार रहता है, वो निरंतर बीमार है और ठीक नहीं हो पा रहा है, अब काफी टाइम हो गए और बेस्ट से बेस्ट इलाज करा लिया, तो उसको ये बात समझ में आ जानी चाहिए जो इसी कॉन्टेस्ट में भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं वो उसके कर्म है, वो उसकी बीमारी नहीं है, वो उसका कर्म है जो उसका पीछा कर रहा है। और इसलिए उसका सोल्यूशन क्या है, वो ध्यान पूर्वक जप करे और भगवान की कथा करे। और भगवान की कथा वो कहते थे कि कोई व्यक्ति जो है वो जप कर नहीं सकता जब तक वो भगवान की कथा नहीं करेगा, उसको भगवान की खूब कथा सुननी चाहिए या करनी चाहिए जब तक, क्योंकि हरि नाम की स्वरूप शक्ति है हरि कथा, जब तक वो व्यक्ति हरि कथा नहीं करेगा हरि नाम का जप नहीं कर सकता, इसीलिए उसको खूब हरि कथा करनी चाहिए और खूब हरि कथा सुनना चाहिए। जब उसका हृदय जो है इस हरि कथा से भरा होगा तो बहुत आराम से बहुत ध्यानपूर्वक जप कर पाएगा। और तो ये बहुत जरूरी है, उन्होंने कहा कि, और उनका एक बार जो है उसके लिए बताया है कि बार वो पता नहीं गुवाहाटी में गए थे, काफी कई घंटे ट्रेवलिंग करने के बाद गुवाहाटी पहुंचे। तो गुवाहाटी में जो है वो बड़े भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत लंबे लंबे लेक्चर देते थे, वो इसके लिए बहुत जाने जाते थे, चार चार घंटे छः छः घंटे। तो कई बार डिसाइपल ही परेशान हो जाते थे कि ये चार चार घंटे और छः छः घंटे। तो उन्होंने जो है वो तो जो इतनी इतने देर ट्रैवल करके जब वो गुवाहाटी गए थे तो उन वो जो व्यक्ति था जिसने जिसने आयोजन किया था इसका, तो उन्होंने कहा कि महाराज जो है आप रेस्ट करना चाहेंगे? तो कहा नहीं नहीं रेस्ट किस लिए, आप जो प्रोग्राम है वो बताओ। फिर जो है हरि कथा करने के लिए बैठ गए तो चार घंटे हो गया, एक तो ट्रेवल करके आए थे फिर हरि कथा कर रहे थे, चार तो सुनने वाला सब उकता गए, जो जो आयोजक था वो परेशान हो गया। तो उसने डिसाइपल्स को बोला कि महाराज को बोलो कि थोड़ा ये बंद कर देंगे, थोड़ा रेस्ट कर लें। तो एक जो एक डिसाइपल गए कान में बोला महाराज आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए बहुत देर हो गया। तो कहा मैं रेस्ट तो कर रहा हूँ, हरी कथा कर रहा हूँ तो रेस्ट ही कर रहा हूँ, हरी कथा मतलब रेस्ट। तो इस तरह से उनका जो था वो हरी कथा मतलब छः छः घंटे हरी कथा करते रहते थे। तो हम देखते हैं उनके जो उसमें किस तरह से जो है उनके जीवन में और उनके जो की घटनाएं हैं, हालांकि महाभागवत लोग कुछ भी करते हैं तो अपने आप ये आप में जो है एक बहुत बड़े जो है एक ये बहुत बड़ा कार्य है कि कुछ भी करते थे तो उनसे जो है लोग सीखते हैं। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बार एक छोटे बच्चे को प्रचार किया उन्होंने, एक छोटा सा बच्चा था 5-6 साल का, तो उसको उन्होंने प्रचार किया। प्रचार किया मतलब कि एक तांगे पर बैठ के जा रहे थे और छोटा बच्चा भी उस तांगे में बैठा था और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के कुछ डिसाइपल थे वो नीचे चल रहे थे। तो उन्होंने बच्चे से पूछा क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, इस तरह से कुछ ज्यादा कुछ बताएंगे, छोटे बच्चे को क्या बताएंगे। वो बाद में जो है वो बच्चा मठ में आ गया, समर्पित हो गया और बाद में एक बहुत बड़ा सन्यासी बनाए जो गौड़िया मठ का। तो आप देखिए कैसे जो है वो इस तरह से कि उनका तरीका क्या था कि हर जगह अलग अलग तरीके जो है वो इस्तेमाल करते थे। एक बार एक तांगे में जा रहे थे तो जो तांगे वाला घोड़े को बहुत पीट रहा था, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला इसको क्यों पीट रहे हो, निरीह जानवर को क्यों पीट रहे हो। तो कितनी करुणा थी कि उन्होंने बोला कि इस निरीह जानवर को क्यों पीट रहे हो, कि तुम चलाओ आराम से चलने दो इसको, जैसे चलता है वैसे चलने दो, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसको पीटो मत। इतनी इतनी चीजों को बहुत कितना कितनी करुणा थी, उस घोड़े के लिए भी सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति जो है इस घोड़े को पीट रहा है। एक बार जो है वो रात को जप कर रहे थे, वो बहुत मिड नाइट में बहुत जोर जोर से जप कर रहे थे, तो एक भक्त जो है उनको एक पदचाप सुनाई दिया। तो पूछते हैं कौन है, तो किसी ने जो थे उन्होंने कहा मैं हूं। कहा कौन मैं? आत्मा का शरीर। तो कहने का मतलब है कि वो उनका जो तरीका था मतलब कि कौन मैं, मतलब एक व्यक्ति मतलब वहां भी मतलब इतने रात में कोई व्यक्ति कह रहा कि कौन है मैं हूं, तो उन्होंने उस वहां पर भी जो है इस तरह से उन्होंने ऐसे किया कि उनको पूरे जीवन याद रहे कि उन्होंने मुझे बोला था कि तुम आत्माओं के शरीर हो, मैं कौन है, मैं हूं, मैं कौन, आत्मा या शरीर। तो एक भक्ति मतलब जो ऐसे आचार्य होते हैं उनका प्रचार करने का तरीका भी अलग अलग होता है। एक बार जो है वो बहुत उनकी बहुत सारी जो चीजें हैं उनके उसके लिए तो बताने के लिए तो उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो मठ में जो है दो चीजें बहुत प्रसिद्ध थी, प्रभुपादेर दाल और प्रभुपादेर गाल। गाल का मतलब डांट जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है बहुत डांटते थे अपने डिसाइपल्स को, बहुत डांटते थे कैसे करना है, ये करना है, ये करना है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक आनंद बाजार पत्रिका का जो एडिटर है वो उनके पास आया और उनके कहा कि आपके जो डिसाइपल हैं वो ठीक नहीं है, ये जो है वो नकली भक्त हैं, सब ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, कुछ बताया उन्होंने जो से भी, तो इनको घर क्यों नहीं भेज देते, भाई अपने असली जीवन जिए, शादी करें, बच्चे करें और आराम से जिए। तो भक्ति सिद्धांत ने कहा कि ये जो है बेस्ट जगह है इनको सुधारने की। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इतने टाइम साथ में रहते रहते मुझे भी इनसे प्रेम हो गया, मैं इनको जाने कैसे दूंगा। अब ऐसे डांटते भी थे पर करुणा बहुत थी, ऐसा नहीं कि डांटते थे कि हमें बाहर से लगता है कि कितने कठोर थे, कैसे बोलते थे, पर करुणा भी बहुत थी। और किसी को भी डांटते थे, चाहे उनका सन्यासी भक्त हो या गृहस्था भक्त हो, किसी को भी, किसी को छोड़ते नहीं। एक बार जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास जा रहे थे रात, तो कमरे से आवाज आ रही थी लड़ने की, दो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास में हमेशा वेद होता करता था, तो उन्होंने ऐसे ना फूल दिया दरवाजा। देखा जो दो ब्रह्मचारी आपस में बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत डांटा उनको, कह रहे हैं कि जो शास्त्रों में कहा गया है कि जो जो ब्रह्मचारी हैं और उसको हैं उसको हमेशा मधुकरी करना चाहिए, मधुकरी करके लाना चाहिए और उसके खाना चाहिए। तुम लोगों को मैंने इतनी सारी फैसिलिटी दे दी, यहाँ सब कुछ दिया, तुम इसीलिए यहाँ आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो। तो वो किसी को भी, उनका अपना तरीका था सबका प्रचार करने का। एक बार जैसे एक डिवोटी आए, उन्होंने कहा महाराज वो जो व्यक्ति है वो कभी मंगल आरती नहीं आता, सारा हमेशा जो है आश्रम में बैठा रहता है। तो उन्होंने कहा उस डिवोटी को कि वो ऐसा कर सकता है, वो ऐसा कर सकता है, बट तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम रोज आया करो मंगल आरती। जब उस व्यक्ति जब उस डिवोटी ने सुना ये कि प्रभुपाद ने कैसे बोला था उनको, तो वो बहुत शर्मिंदा और अगले दिन से उसका बॉडी प्रोग्राम ठीक हो गया। जो है किस तरह से, तो उनका अपना तरीका था प्रीचिंग करने का, अपना स्टाइल था कि वो किस भक्त को किस तरह से जो है वो प्रीच करते थे। तो बस टाइम नहीं है तो मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा आपको कि एक बार जो है वो एक गृहस्थ और ब्रह्मचारी में जो है वो थोड़ा कन्फ्लिक्ट हो गया, जो कि हर जगह होता रहता है। कई बार गृहस्था समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा दानी हूँ या बहुत देने वाला हूँ, और ब्रह्मचारी के मन में रहता है कि ये व्यक्ति जैसे जो भी हो किस तरह से। तो भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने कहा कि उसको बोला उस गृहस्था को कि तुम अगर सेवा नहीं करोगे भक्तों की तो तुम क्या है कि तुम इस जो है वो इस धाम की सेवा नहीं, तुम भोग की सेवा कर, तुम भोग कर रहे हो। इसका मतलब घर गृहस्थ का कर्तव्य है कि उसको दान देना चाहिए और उसको भक्तों की सेवा करनी चाहिए। अगर वो ये सब नहीं करता, ये गृहस्थों का बहुत प्रमुख धर्म है, अगर वो इस चीजें नहीं करता तो निश्चित रूप से जो है उसका पतन हो जाएगा। और ब्रह्मचारी को बोला कि मठ में रहने वाले को समझ लेना चाहिए कि उसको नहीं, मठ में रहने वाले को सहनशील होना सीख लेना चाहिए कि हम मठ में रहते हैं तो हमें कितना सहनशील होना चाहिए कि कोई कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए उससे, कि कोई किसी तरह से बातें करें तो हमें जो है, उन्होंने बोला कि मठ में रहने वाले को टॉलरेंस सीखना चाहिए कि हमें जो है, और बाहर वाले व्यक्तियों को बोला कि कैसे रिस्पेक्ट करते हैं डिवोटी का, वो तुम्हें सीखना चाहिए कि हम डिवोटी को कैसे रिस्पेक्ट करते हैं मठ में रहने वाले डिवोटीज की। तो इस तरह से जो है उन्होंने वो दोनों को कंसाइल कर दिया इस तरह से। तो और फिर कई बार जब देखते थे कि दो डिवोटी में बहुत कभी विवाद होता था तो दोनों को भी बुलाते थे और सामने सामने बिठा दिया और बोलते थे तुम इसकी प्रशंसा करो, जो इसकी वो निंदा करता था अब उसकी बोलते थे तुम इसकी प्रशंसा करो। आप खुद सोचिए जिससे व्यक्ति की बनती नहीं है और कंफ्लिक्टिंग रहता है उसको बोलते सामने बिठा के तुम इसकी प्रशंसा करो। तो उनका जो है सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अपना स्टाइल था मतलब ये सब करने का, और इसी बहुत करुणा से करते थे ये सब कुछ। और एक बार बताया जाता है कि फिर उन्होंने एक और डिवोटी आया जो है वो कंप्लेन करने के लिए किसी दूसरे डिवोटी के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो दूसरे का दोष है वो तुम उससे तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें अपने दोषों जो है वो तुम्हें ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, दूसरे के दोष से तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। किसी दूसरे व्यक्ति में फॉल्ट है उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारे अंदर जो फॉल्ट है वो तुम्हारा फॉल डाउन कर देगा, उससे तुम्हारा पतन हो जाएगा, तो तुम मत देखो उसके अंदर, वो देख रहा है देखने दो उसको। जो है माया देवी पहले ही काम कर रही है वो एक दूसरे को गिराने का, वो जो है भक्तों को पुल करने का पहले ही काम कर रही है, नीचे गिराने का, तो ये काम तुम खुद क्यों करते हो, अपने हाथ में क्यों लेते हो गिराने का काम किसी को, तो जो कर रही है उसको करने दो, इसीलिए किसी की निंदा मत करो और किसी को क्रिटिसाइज मत करो। तो ये जो है उनके कुछ वो थे। बहुत जो है उन्होंने जो लास्ट टाइम में अपने जो प्रवचन दिए थे, जो लास्ट टाइम में उनके जितने भी प्रवचन हुआ करते थे वो सब इसी पर फोकस था कि वो इंडिकेशन था कि वो चले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत सारी चीजें ऐसे बता रहे थे कि ताकि वो डिवोटी उनसे सीखे। उन्होंने कहा कि कृपया करके अपने अंदर जो आपके एनवी है और प्राइड है उसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। अपने डिसाइपल्स को बोलते थे कि आपके अंदर जो एनवी है और प्राइड है इसको हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उनको मालूम था शायद कि आगे चलकर जो है बहुत बड़ी आग लगने वाली है और बहुत जो है कन्फ्लिक्ट होने वाला है। तो बार बार अपने लास्ट के हर लेक्चर में बोला करते थे कृपा करके अपने एनवी को और अपने प्राइड को छोड़ दीजिए। फिर कि पूजा लाभ और प्रतिष्ठा से हमेशा अपने आप को अलग करके रखिए। बार बार बोलते थे कि पूजा लाभ और प्रतिष्ठा से जो है अपने आप को अलग करके रखिए। फिर उन्होंने तीसरी बात बताया कि कितने भी संकट क्यों ना हो जाए, कितना भी कोई व्यक्ति अपमानित क्यों ना करे, कोई भी सजा क्यों ना मिले, कभी भी कृष्ण भक्ति छोड़ के मत जाना। कि कोई व्यक्ति कितना भी अपमानित क्यों ना कर दे, कोई सजा क्यों ना दे दे, कितने भी संकट क्यों ना आ जाए आपके ऊपर, पर कभी भी कृष्ण की भक्ति छोड़कर मत जाना। तो ये जो है वो बहुत इस चीज पर बहुत जो है बल दिया करते थे। और फिर कहते थे जो प्रचारक थे उनको कहते थे कि आप इसलिए कि बार बार आप प्रचार करने जाते हो और प्रचार करके जब आते हो आपको लगता है कि व्यक्ति भक्त नहीं बना, तो इस भक्त से अटैच मत हो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। कि हमें इस बात से डिस्करेज नहीं होना चाहिए कि हम जैसे प्रचार करें उससे रिस्क जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है। हमें कंटिन्यूअसली प्रचार करते रहना चाहिए, जो है हमारी जो एफर्ट को देखकर कृष्ण हमें कृपा करेंगे और हम एक दिन सफल होंगे अपने प्रचार करने में। और इस बात को इसलिए बल देते थे कि आपका काम केवल प्रचार करना है, आप प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो, प्रचार करते रहो। फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही थी कि जो व्यक्ति सहन नहीं कर सकता वो हरि नाम का जप नहीं कर सकता, इसीलिए टॉलरेंट बनो। वो बार बार जो है इस बात को भी बात बताते थे कि हर डिवोटी को जो है वो टॉलरेंट होना चाहिए। जब तक व्यक्ति टॉलरेंट नहीं होगा, जब तक व्यक्ति सहन नहीं करेगा, वो निश्चित रूप से जो है वो अपने हरि नाम का चैंटिंग वो ज्यादा समय तक कर नहीं पाएगा। फिर कहते थे कि जो प्रीचिंग है उसमें हमें बिल्कुल सटीक होना चाहिए और फियरलेस होना चाहिए। कृष्ण के बारे में हम जो भी प्रचार करते हैं उसके बिल्कुल सटीक और जो है वो निर्भीकता से बोलनी, प्रेजेंटेशन जो है वो निर्भीकता से होनी चाहिए। कभी डर के और या किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो है वो बातें नहीं बतानी चाहिए कि हम डर के बता रहे हैं, या किसी हम किसी के यहाँ गए, किसी ने हमें बुलाया तो हम उसके इन्फ्लुएंस में आकर के वो चीज़ों को बता रहे हैं। तो इसके बहुत जो है वो सख्त खिलाफ थे कि हमें सही बात बतानी चाहिए और बिल्कुल सटीक तरीके से बतानी चाहिए ताकि लोगों को कृष्ण के बारे में सही समझ उत्पन्न हो। और फिर कह रहे थे कि प्रयास करें कि हमेशा सच बोलें। और एक इंपॉर्टेंट बात ये करते हैं, वही व्यक्ति सच बोल सकता है जो स्वयं सत्य में स्थित रहता है। जो व्यक्ति सत्य में स्थित नहीं है वो सच बोल भी नहीं सकता। तो इसलिए प्रयास ये करो कि आप खुद सत्य में स्थित रहो और फिर जो है आपके अंदर ये क्वालिटी आएगी कि आप सत्य बोल सकोगे। तो इस बात पर भी उन्होंने जो है बहुत बल दिया था। और उन्होंने एक और भी बात बताई कि हर जो डिवोटी है हमें फंड कलेक्शन के लिए भी अगर हमें कहीं जाना पड़ता है तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। वो कहते भिक्षा मांगना भी एक प्रचार का अंग है, जो हम फंड कलेक्शन है ये भी एक प्रचार का अंग है। हमें इसको अलग नहीं देखना चाहिए कि कहाँ राधा कृष्ण का प्रेम, कहाँ भजन और कहाँ जाते हैं प्रभु जी माता जी हम मंदिर बना रहे हैं दे दो। कह रहे तो भक्ति सिद्धांत कहा करते थे महाराज कि ये जो है ये भी एक प्रचार का अंग है, तो हमें इससे जो है अलग नहीं देखना चाहिए। तो हमें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के एक जीवन से जो है इंस्पिरेशन भी मिलती है और हमें उसको उनकी इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए और इंस्ट्रक्शंस को भी जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। वैसे बहुत कुछ है बारे में कहना तो बहुत मुश्किल है, बहुत सब कुछ है कहने के लिए, पर चूंकि समय हो गया है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अविभाव तिथि महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण।